चैतन्य चैतन्य सार्वभौम अर्थात अध्यात्म महापुरुष के उद्धार किया अवतार से। महाप्रभु का बहुत सारे प्रशंसक उनके एक नाम है सार्वभौम भक्ति नाम कृष्णा सार्वभौम भक्त सार्वभौम भक्त सार्वभौम शब्द का अर्थ क्या है सार्वभौम हम बोलते हैं ना वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ जगन्नाथ जी को महाराज हम क्या बोलते हैं भक्ति में ठाकुर क्या बोलता है सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर गौर किशोर जी महाराज क्या बोलते हैं साक्षात वैराग्य और जगन्नाथ देव जी महाराज क्या बोलते हैं वैष्णव सार्वभौम तो सार्वभौम शब्द करते थे यस ग्रेटेस्ट चीफ लीडर तो सार्वभौम भट्टाचार्य जितना से भट्टाचार्य जो अर्थ किया है मध्य प्रदेश में शर्मा शर्मा आगे क्या है द्विवेदी त्रिवेदी
मिश्रा
मिश्रा अर्थव्या बंगाल में भट्टाचार्य बनर्जी चटर्जी मुखर्जी ये ब्राह्मण तो सार्वभौम भट्टाचार्य ब्राह्मण तो है लेकिन नाम है श्रेष्ठ उनका एक्चुअली घर था नवद्वीप में था उन्होंने बहुत बड़ा पंडित थे वो काल में बहुत बड़ा पंडित और आज जिस तरह सबसे दामी व्यक्ति कौन है IIT पढ़ाई किया PhD डॉक्टरेट बहुत बड़ा और आज से पहले जमाने में किया था कौन कितना शास्त्र जानते हो बहुत समाज में उसका है हाँ त्रिवेदी चतुर्वेदी वैष्णव सार्वभौम तो बहुत बड़ा पंडित थे उन्होंने नवद्वीप से उन्होंने जगन्नाथ खरीदे और उसी जमाने में सबसे बड़ा पंडित अर्थ किया है बड़ा मायावादी तो उन्होंने मायावाद व्याख्या करते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन सॉरी नवद्वीप से जगन्नाथपुरी गया तब उनके साथ बात करके उनको उनको दर्शन को उनको पराजित करके उनके शुद्ध भक्त कराने वो लीला हम चैतन्य चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद कहाँ जा रहे थे वृंदावन नित्यानंद को घुमा के उनको अद्वैत आचार्य घर पर लेके आया वहाँ सची माता को लेके आया और सची माता उनको बोला कि तुम मेरे एक बात सुनो कम से कम तुम वृंदावन मत जाओ तुम जगन्नाथ पुरी जाओ ताकि तुम्हारे बाद में कभी कोई लिखे वृंदावन बहुत दूर है कौन तुम्हारे किया कौन बात में से देगा कम से कम जगन्नाथ पुरी रहोगे तो कम से कम कभी कभी बात खबर खबर ले सकते तबीयत ठीक है इस तरह भक्त संतान जब शादी होना चाहते हैं पिता माता जब बाधा डालते हैं इस तरह नहीं है पिता माता अशीर है बच्चा लोग सन्यास लेना चाहते हैं पिता माता बाधा डालते हैं ये अर्थ नहीं है पिता माता अशीर है ये बात्सल्य प्रेम है पिता माता जिसका संतान बहुत बदमाश है नटखट है उनके प्रति पिता माता का कितना प्रेम है और जिसका संतान वैष्णव होगा साधु होगा उनके प्रति पिता माता का प्रेम और कितना होगा तो उस तरह संतान के प्रति आकर्षण ये भौतिक नहीं है तो संतान जब संन्यास साधु होना चाहते पिता माता बाधा डालते हैं तो उसको उसको कभी असुरी किस तरह बोलना वैष्णव अपराध है वैष्णव बच्चा वैष्णव हो रहा है उनके प्रति पिता माता का आशीर्वाद तो भक्ति है तो आशीर्वाद किस संतान को पिता माता बोला नहीं शादी माता मत जाओ कि इसका अर्थ क्या उन्होंने चाहते हैं उनके साथ रहें वैष्णव को साथ ही रखना चाहते हैं ये तो एक तो भक्ति का लक्षण है इसी तरह जो पिता माता इस तरह संतान को प्रेम करते हैं वो तो पिता माता को इस तरह हमें कभी नहीं भरना चाहिए ताकि पिता माता आशीर्वाद है भक्ति नहीं करनी बात्सल लग गए। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के मामी उन्होंने सन्यास लेने परमिशन दी। तो चैतन्य महाप्रभु बोला हे माता मैंने सन्यास लेकर बहुत गलती किया, ठीक है मेरा सन्यास का कोई मूल्य नहीं है, मेरा आप मेरा माता हैं, आपका वचन मेरा सन्यास से बहुत ज़्यादा है, आप बोल जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, अभी जो भी बोलेंगे सन्यास त्याग कर मैं आपको अभी आपके साथ जाके मैं पत्नी के साथ हर संसार करूँगा, मेरा कोई समस्या नहीं है, मेरा सन्यास किया है, मेरा मैत्री सेवा करना मेरा जीवन का सबसे लक्ष्य है, मेरा सन्यास जो गलती किया गलती किया फिर छोड़ दूंगा, आप बोलेगा तो फिर संसार करूँगा पत्नी के साथ। माता बोले नहीं जो किया वो करो ताकि अभी सन्यास त्याग करके आदमी सबको बुराई बोलेगा तुम्हारा बदनाम होगा मेरा बदनाम होगा ना तो लिया तो सन्यास लो लेकिन वृंदावन मत जाना जगन्नाथ पुरी ना। तो चैतन्य चैतन्य में से जब आप चैतन्य माँ पर मातृभक्ति पाठ करेंगे आंखों से पानी आएगा, इतना चैतन्य वहाँ पर उनका मातृभक्ति बहुत मैं शास्त्र में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु की मातृभक्ति है इस तरह मातृभक्ति से करते हैं। तो फिर भी चैतन्य उस तरह माता को स्वर के जगतवासी को उद्धार करना शुरू किया। सन्यास लेके जब उन्होंने सॉरी अभी जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी पहुँचने के बाद जगन्नाथपुरी पहुँचने के पहले एक जगह नाम है तो दंड भंगा नदी है, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने उनका सन्यास दंड तोड़ दिया तो दे नदी में फेंक दिया। नित्यानंद बोले तुम दंड तुम्हारे इतना साहस है भगवान का हाथ में चढ़ के जा रहे हैं, चैतन्य भगवान है तुम्हारे इतना साहस है ताकि तुम चैतन्य के हाथ में जा रहे हैं, तुमको क्यों चैतन्य महा बहन कर कैदी करेंगे नदी में महाप्रभु का सन्यास किया जरूरत स्वयं भगवान है उनके सन्यास तो महाप्रभु जो आके देखा नित्यानंद किया महाप्रभु बहुत क्रोधित है ये मैं सन्यास लिया तुमने यह तोड़ दिया बहुत क्रोधित है बोलते कि तुम्हारे साथ मेरा किसी के संपर्क नहीं महाप्रभु भाग में चाहो तुम्हारे साथ मेरा किसी आना जरूरत नहीं तो महाप्रभु अकेला उन्होंने जगन्नाथ और जगन्नाथ दर्शन के करने के लिए आप प्रेम के आवेश में जा रहे दीप दीदी कुछ ज्ञान नहीं नित्यानंद प्रभु शंकर भगवान के पीछे पीछे जा रहे थे तो इतना जोर में जा रहे थे तो साथ में नकलना बहुत मुश्किल है। तो महाप्रभु बहुत पहले पहुंच गए वहाँ पे और जगन्नाथ को देख के उन्होंने प्रेम अचेतन हो हम जब भगवान का दर्शन हमारे गुरु महाराज शेष भक्त गुरुनाथ कहते हैं जब भगवान का दर्शन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जिस तरह भगवान का दर्शन कर उस तरह ही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो पहले दर्शन तो प्रेम अचेतन होता है, जब जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो आंसू इतना आते हैं समन में जितना आदमी सब कपड़ा गीला हो इतना सीरीज की तरह पानी आता है तो उनका दर्शन क्या भाव है कौन भाव से दर्शन कर तो चैतन्य महाप्रभु जिस तरह भगवान के दर्शन करते हम उस तरह भगवान के दर्शन करते तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देख के अरे भगवान है तुमने उनको पकड़ने के लिए गला लगाने के लिए भागने लगा और जब जाते उन्होंने प्रेम में अचेतन तो सारे जो पांडव लोग पांडे लोग तो सबक तो इतना बुद्धिमान नहीं होते हैं आजकल पांडे लोग संसार चलाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं और जीप के दिख दिख कर जीप से रुपये निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं तो ये पांडा का हालत है तो पांडे लोग महाप्रभु का भाव समझ गए कोई पांडा उन्हें मारने के लिए गया ये क्या है भाव देख रहे हैं जगन्नाथ के पास जा रहा है आज्ञा न दिया भगाओ इसके सेंटिमेंटल। लेकिन दैवक्रम में हुआ ब्राह्मण का जो राज, ब्राह्मण है सर्वभट्टाचार्य, सारे पंडित का जो लीडर है, वो जितना सारे पंडित है उनको जो लीडर है उन्होंने राज ब्राह्मण सर्वभट्टाचार्य दैवक्रम उन्होंने स्वाभाविक तो उनको साधारण ब्राह्मण ही था। उन्होंने देख के पता चले स्वाभाविक ये साधारण के व्यक्ति नहीं है। मैं बोला नहीं, ये जो अज्ञान हो गया ना इनको मेरा घर में लेके चलो। तो सारे आदमी लोग चैत्र महापुर लेके अज्ञान अवस्था में उनको घर में लेके गया, ज्ञान नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद नित्यानंद को अलग अलग भक्त है आगे जगन्नाथ दर्शन देके सुना, इस तरह एक साधु आया जगन्नाथ मंदिर, वो तो बात फिर गया सारे जगह में, एक साधु आया अज्ञान हो गया वहाँ चला गया। तो जगह सुनने जी इस तरह एक साधु आ गया जगन्नाथ को देखा अज्ञान हो गया तो सर्व भट्टाचार्य ने लेके गया। तो नित्यानंद सुन के तो समझ के किया परिस्थिति। तो कितना घंटा बीत चुके हैं तो नित्यानंद पूर्ण संग में लेके देखा महाप्रभु अचेतन। तो उन्होंने तो किया कि नित्यानंद प्रभु कीर्तन शुरू किया, तो कीर्तन शुरू से उनके महाप्रभु का ज्ञान वापस आया। तो इस तरह उसी टाइम बहुत उन्होंने चेष्टा किया जगाने के लिए, तो कोई जीवन का कोई लक्षण नहीं है। समझ बहुत ज्ञानी आदमी था, बहुत कोशिश किया, देखा तो मर गया है कोई प्राण नहीं, लेकिन थोड़ा रुई कॉटन नाक के आम धरा तो थोड़ा हिल रहा है, आज थोड़ा ले रहा है। तो समझ नहीं अभी प्राण है, अभी शमशान में मत लेके जाना, अभी राखो खुश है। तो नित्यानंद को कीर्तन कर फिर जाना। तो उसी टाइम नित्यानंद के साथ में और एक भक्त महापुरुष था, उनका नाम है गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य है सार्वभौम भट्टाचार्य का जीजा जी और सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य का साला, ब्रदर इन लॉ। तो गोपीनाथ आचार्य का मालूम है नवद्वीप में था चैतन्य महाप्रभु भगवान। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने ज्ञान आने के बाद महाप्रभु का आता है तुम कहाँ से आया बात करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोला मैं नव नदिया से आया, मेरा पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, मेरा दादाजी का नाम, नाना जी का नाम नीलम्बर चक्रवर्ती। नीलम्बर चक्रवर्ती का ग्रैंडसन है, तो नीलम्बर चक्रवर्ती तो मेरा चाचा लगते हैं, मेरा पिताजी का फ्रेंड है, मेरा पिताजी का फ्रेंड है नीलम्बर चक्रवर्ती, तुम उनका ग्रैंडसन है, तो तुम तो मेरा बहुत नजदीक है, मेरा पुत्र तुम्हें है। और तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, अभी 24 साल है, इतना कम उम्र में संन्यास लिया है और देखने तुम्हारे स्वरूप इतना अच्छा है, सारे लड़की देख के तुम्हारे कुटुंब से भाग गए हैं, इसीलिए तुम संन्यास रखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये उम्र में इतना सुंदर चेहरा तो संन्यास लिया है कैसे मेंटेन करेगा संन्यास। ठीक है तुम मेरा पुत्र तुल्य, तो मेरा तो कुछ जिम्मेदारी है, तुमको मैं कुछ दिन वेदांत तो सिखाऊंगा शास्त्र धर्म, ताकि तुम्हारे ज्ञान आ जाएगा, ताकि संन्यास तुम्हें मेंटेन कर सकते। तो महाप्रभु बहुत अच्छा है, अब मुझको पिता की तरह पिता की तरह और मुझको पुत्र की तरह सेना करे, तो मेरा इसके से बड़ा बात क्या हो सकता। तो इस तरह बात जब गोपीनाथ आचार्य सुना तो उनका मन थोड़ा गुस्सा है, ज्ञान दो ठीक है। वो स्वयं भगवान है, उनके नाम। तो इस तरह थोड़ा साला है बहन जी, इस तरह झगड़ा। तो वो जो चर्चा है हम थोड़ा अभी चेतन से पाठ कर। আজ্ঞামাগী গোপীনাথ আচার্যকে লইয়া প্রভুর নিকটে আইলা ভোজন করিয়া নম নারায়ণ বলি নমস্কার কইল, কৃষ্ণে মতিরস্তে বলি গোসাই কহিল। মাওবাদী যে এক দূসরাকে দেখতে হ্যাঁ নম নারায়ণ নারায়ণ দণ্ড ধারণ মাত্র নর নারায়ণ ভাবে। মাওবাদী বলতে হয় দণ্ড ধারণ, দণ্ড গ্রহণ করে মাত্র যা সন্ন্যাস নিতে হয় তুরন্ত নারায়ণ মন্দির। দণ্ড ধারণ মাত্রে নর নারায়ণ হবে, দণ্ড ধারণ করছেন আদমি তুরন্ত নারায়ণ মন্দির। ইসিলে যা প্রণাম করতে হয় নম নারায়ণ। আর ইস তরহ কিছু কেউ সাধু কেউ যদি কেউ প্রণাম করতে তো সাধু কে বলতে হয় কৃষ্ণে মতিগ্রস্ত। বাঘ আসবে না আয়ুষ্মান ভাব অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হোক, কিন্তু বৈষ্ণব ফিলোসফি দীর্ঘজীবী হওয়ার কোনো জরুরত নেই। হ্যাঁ পেয়ের পৌধা বহুত লম্বা জীবন রাস্তা হয় ওকে কে ফায়দা হয়। হ্যাঁ ভক্ত কে যাতে হ্যাঁ কৃষ্ণে মতিগ্রস্ত আশীর্বাদ করতে হয়। রাধা নিশ্চিত হাত দেখ আশীর্বাদ করতে হবে, হাত কি ভাই থাপ্পর লাগাম রাধানি ইস্তর হাত দেখা যায় কিয়া আশীর্বাদ কৃষ্ণের মতি রস। রাধানি হাত যদি দেখা যায় তো দেখা আমাকে আশীর্বাদ দেন, কিন্তু আমাকে কিছু আশীর্বাদ দিতে হাত দিতে না রাধানি ইস্তর আশীর্বাদ দেন কৃষ্ণ ঠিক আ গিয়া কৃষ্ণের মতি রস। শুনি সার্বভৌম মনে বিচার করিলাম বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও বচনে জানিলাম। যাব সন্ন্যাসী কে গৃহস্থ প্রণাম করা যদি চৈতন্য মহাপ্রভু উমর মে ছোট হ্যাঁ লেকিন সর্বমটের জন্য নম নারায়ণ বললাম। আর চৈতন্য মহাপ্রভু কে বলা কৃষ্ণ মতিগ্রস্ত। সর্বমটা তো জ্ঞানী আদমি হ্যাঁ সম্বন্ধে কৃষ্ণ মতিগ্রস্ত কোন বলে মহাপতিতে বলে গেলে এ বৈষ্ণব হয়। তো উনি সমাজ দিয়া এ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হ্যাঁ এ আমার গুরু কে নাই হ্যাঁ তো মায়াবাদী সন্ন্যাসী হাম জিস তার সঙ্গে মায়াবাদী তো বুড়া হ্যাঁ লেকিন মায়াবাদী সন্ন্যাসী কবি নেই সে তো হাম বুড়া হ্যাঁ জিস তারা ইয়াকে উজ্জয়ন মে হাম হাম কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ হ্যাঁ বহুত অসুস্থ হাম কিতনা বড় পড়া হ্যাঁ নিষ্কর্ম আনলে কর্মকাণ্ডী সেটা হ্যাঁ লেকিন উজ্জয়ন বলে হাম কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ হ্যাঁ আমার পিতা কর্মকাণ্ডী সুস্থ হাম কত বড় হ্যাঁ কর্মকাণ্ড জন্মন অর্থাৎ বহু নিশ্চয় ইসি তরহ আজ হামকে মায়াবাদী ব্রাহ্মণ হ্যাঁ বহু বুড়ে হ্যাঁ লেকিন উসি তরহ মায়াবাদী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আমার ফিলোসফি কতনা উঠে মায়াবাদ ভগবান ভি মায়া ভগবান কে শরীর আমার জ্ঞান কতনা উঠে হ্যাঁ। গোপীনাথ আচার্যে রে কহে সার্বভৌম গোসাই জানিতে চাই কাহা পূর্বাশ্রম। গোপীনাথ আচার্যকে বলা হয় গোসাই ঠাকুরকে বলো উনকে পূর্ব আশ্রম কাহা কাহা। গোপীনাথ আচার্য কহে নবদ্বীপে ঘর জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর। গোপীনাথ আচার্য বলা হয় ইন্হ ঘর হ্যাঁ নবদ্বীপ উনকা পিতা কা নাম হয় জগন্নাথ আর উনকা পদবী হয় বিশ্ব অর্থাৎ উনি ব্রাহ্মণ বিশ্বম্বর নাম ইহার তার ইহ পুত্র নীলাম্বর চক্রবর্তী হয়ন দৌহিত্র। ইনকা নাম হয় বিশ্বম্বর পিতা জগন্নাথ মিত্র আর নানাদিকা নাম হয় নীলাম্বর চক্রবর্তী। সার্বভৌম কয় নীলাম্বর চক্রবর্তী বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তার খেতি। তো বিশারদ मेरा ठीक मैं मोहित विशाल और संभव शर्माटी तो पिता का नाम यह कौन बोल विशाल विशाल अधर समाध्यायी समाध्यायी अर्थात सम अध्यायी एक साथ अध्याय कर एक साथ पढ़ेगा हाँ सहपाठी समाध्यायी यही तारीख है मिश्र पुरंदर तार मान्य है न जानी পিতার সম্বন্ধে দুহাতে পূজ্য করি মানি হ্যাঁ তো এই মেরা পিতাকে সাথে সম্পর্কিত মিশ্র পুরন্দর তো এ মেরা পূজ্য নদিয়া সম্বন্ধে সার্বভৌম হিষ্ট হইলা প্রীত হইয়া গোসাই রে কহিতে লাগিলা হ্যাঁ যা শুনা নবদ্বীপ চায়া তো সে খুশ লাগে তো মেরা তো ঘর পাইলে নবদ্বীপে तो बहुत सरलता क्या प्रसन्नता है प्रीत भैया गोसाई सहज पूज्य तुम्हें आर तो सन्यास अतएव हम तुम्हार आमी निज दास तुम मेरा पूज्य है ताकि मिलाप चक्रवर्ती का ग्रैंडसन है और फिर सन्यास की तो मैं तो गृहस्थ तो मेरा पूज्य नहीं है শুনি মহাপ্রভু কইল শ্রী বিষ্ণু শরণ ভট্টাচার্য কহে কিছু বিনয় বচন যা বিস্তারে বলা তো মহাপ্রভু কে বলা শ্রী বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু এ বৈষ্ণব লক্ষ্য নয় কই আমাদের কই প্রশংসা করে গা শ্রী বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু কান না হাতে শুনে নেই চাই আমার যা প্রশংসা করতে হ্যাঁ তো নেই শুনে চাই তো প্রশংসা শুন আমার আমার অহংকার হয় পতন হয়ে যায় तो कोई और प्रशंसा करने सुना श्री विष्णु को उनके काम बंद कर देते नहीं सुनना प्रशंसा सुनने नहीं ताकि सबसे बड़ा बीमारी तो वो है अहंकार तो प्रशंसा सुनेंगे तो अहंकार ज्यादा बढ़ जाएगा तो महाप्रभु तो श्री विष्णु बोले सर्वभर्ता जी का प्रशंसा करने लगा ভট্টাচার্য কে বললা হ্যাঁ তুমি জগৎগুরু সর্ব লোকহিতকর্তা বেদান্ত পরম সন্ন্যাসী উপকর্তা হে সর্ব ভট্টাচার্য আপ তো জগৎগুরু সন্ন্যাস লিয়ে নেই লেকিন আপ জগৎগুরু হ্যায় আপ সন্ন্যাসী কে পড়াতে জ্ঞান দিতে হ্যাঁ আপ ইতনা পণ্ডিত ব্যক্তি আমি বালক সন্ন্যাসী ভালো মন্দ নাহি জানি তোমার আচ্ছা নিলু গুরু করি মানি আমি বালক সন্ন্যাসী আমি বালক সন্ন্যাসী আপ মেরা গুরু হ্যাঁ বৈষ্ণব তো মনে হবে তার সব কিছু তারা সম্মান হ্যাঁ বৈষ্ণব জগৎ কে বৈষ্ণব জগৎ এ দূসরেকে কেউ সম্মান তোমার সঙ্গ লাগি মোহর ইহা আগমন সর্বপ্রকারে করিবে আমার পালন আপনার সঙ্গ লেনে গেলে মেয়ে আয়া তো আপ মুসকো মুসকো গাইড কি তো কি বলে আজ যে হইল আমার বড় এ বিপত্তি তা হইতে কইলে তুমি আমার অব্যাহতি আজ যে মেরা হালত হওয়া থা অজ্ঞান হওয়া থা বাপে পান্ডালে পিটে গেলে মেরা তো জীবন খতম হয়ে গেছে কিন্তু আপ মুসকা রক্ষা করে ভট্ট কয়ে কিলে তুমি না দৈব দর্শনে আমার সঙ্গে যাবে কিংবা আমার লোক মা ভট্টাচার্য বললেন মহাপ্রভু আপ একেলা মত জানা যাবে না দর্শন করে মেরা সব জানো কিন্তু সাত মিনিট আধ মিনিট কোনো একটু সব জানো একেলা জায়গা কি রাত খুঁজতে হবে প্রভু কাহে মন্দিরে ভিতরে না যাইব গরুরের পাশে রয়ে দর্শন করিব মহাপ্রভু না আন্দোলন যাওনি যাওনি আপকো সাথে কিছু কিছু যাওনি মন্দির বাহার যে গৌর স্তম্ভ উহাতে দর্শন করি গোপীনাথ আচার্য কে কহে সার্বভৌম তুমি গোসাই লিয়া করাইও দর্শন গোপীনাথ আচার্য কে করে তুম লিখে যাও জগন্নাথ দর্শন মহাপ্রভু কেতনা বিনয় হ্যাঁ আন্দার মানে নিয়ে পাহাড় মে গৌর স্তম্ভ খারাপ আর মহাপ্রভু কে প্রিয় শিষ্য কোন হ্যাঁ হরিদাস ঠাকুর হরিদাস ঠাকুর কবি মন্দির মে দর্শ মন্দির মে আনন্দ কবি গায়ে मंदिर पास में गए नहीं, तो दूर से तुझे दर्शन कर दम करते। ये हमारा आते रहे, और हम क्या करते हैं, हम खुद में पहले जाते हैं, नहीं मैं राजनीति करेंगे, मैं चावल डुलाऊंगा, मैं सब कुछ करूँगा। हमारे कोई कोई दिनों तक थोड़ा सा क्या
लेस
मत हमारे आचार्य लोग के इस तरह व्यवहार है, हमारा हम उल्टा है। आज फेस्टिवल में जाऊंगा, हम कैमरा लग रहा है, मैं देखेंगे इस तरह हमारा। আমার মাতৃশাসা গৃহ নির্জন স্থান, তাহা বাসা দেহ কর সর্বসমাধান। মাতৃশাসা অর্থাৎ মেরা মামাকা দেন, মাতৃ মৌসিকা ঘাটে তুই চৈতন্য মহাপ্রভুকে রেখে ব্যবস্থা করেন। বহু আচ্ছা জায়গা হয়, নির্জন জায়গা হয়, কই ডিস্টার্ব করে না। গোপীনাথ প্রভু লইয়া তাহা বাসা দিল, জলপত্র সর্ব সমাধান পেল। গোপীনাথ রাজ্যন্ত লিখে গিয়া মহাপ্রভুকে আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া সূর্যোত্থান দর্শন করাইল। আগলে দিন মহাপ্রভুকে গোপীনাথ রাজ্য লিখে জগন্নাথ দর্শন করে নিল। মুকুন্দত্ব লইয়া আইল সার্বভৌম স্থানে, সার্বভৌম কিছু তারে বলিল বচন। এবার মুকুন্দত্ব মহাপ্রভুকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য কাছে, আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য উনকো ঠিক বলনে লাগে। প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর, আমার বহু কৃতিবারে ইহার উপর সার্বভৌম ভট্টাচার্য। এর এর যে বালক সন্ন্যাসী হ্যাঁ বহু আচ্ছা, স্বভাব বহুত নম্র ভদ্র হ্যাঁ, বহুত জেন্টল, আর দেখে বহুত সুন্দর। তো মেরা বহুত প্রেম বাড় রা লাগে উনকে লিয়ে মৃত্যু করো। কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ, কি নাম ইহার শুনিতে হয় এমন। কোন আশ্রমে সন্ন্যাস গিয়া তিনটা নাম কি এত বাতা দিল। গোপীনাথ কহে নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, গুরু ইয়ার কেশব বার অতি মহাধন্য। তো বলে ইনকা নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আর এ গুরু কে নাম হয় কেশব। তো সন্ন্যাস কা দশ উপাধি হ্যাঁ। তো চৈতন্য ভারতী থা নিচে সম্প্রদায় সার্বভৌম, এই বন অরণ্য পুরী এ সম্প্রদায় থাকে উচ্চা। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তো দেখা যে এরা নিচু গ্রুপ কাজ সন্ন্যাস নিয়ে চৈতন্য তো মেলা কুশি মদত করা চাই না। আচ্ছা লড়কা হয় বালক সন্ন্যাস নিয়ে মেলা এরিয়া কা লোকাল আদমি ইসকো মেলা কুছ টিকা করা চাই। ভগবান শুদ্ধ ভক্ত কে ইয়াই লক্ষণ হ্যাঁ, জো নেগেটিভ আছে উনকো ভি উনকো প্রতি এক প্রকার টিকা করনে কা মনে হয়। মায়াবতী সন্ন্যাসী ফির ভি উনকো মন এক সব তো উনকো উস্তারনা চাহে। ভগবান শুদ্ধ ভক্ত কে নেচার ইস তরহ। রূপা যা বিদেশ মে গা থা বহুত পাগল আদমি পুরো দেখে হ্যাঁ, কই এক পাগল রাস্তা মে কিসি বি মিলা তাকে দে তো আপ লিজি। এক পাগল আগে আগে বাত মে তোমার পাত্র ঠিক নেই হ্যাঁ, আমি সব করে যা পাগল ঠিক করে দিয়ে তো পাগল আছে তার দিকে ফির ভি আগে প্রভাতকে সেবা করতে হয়। সিদ্ধ ভক্ত কা ইস তার লাগছে পাগল আদমি আগে ভগবান কে আয় ও পাগলাম নাকি পাগলাম করতে হয় লেকিন আচ্ছা বেকার। সার্বভৌম কহে ইহার নাম সর্বোত্তম, ভারতী সম্প্রদায়ে হয়ন মধ্যম। ভারতী সম্প্রদায় না এ না উচ্চ সম্প্রদায় গোপীনাথ কহে ইয়া নাহি বাচ্চা অপেক্ষা অতে বড় সম্প্রদায়ের নাহি অপেক্ষা। গোপীনাথ আচার্য বলে ইনকে নাম কি আর ভগবান হয় এ বাহ্যিক কোন ভারতী কুড়ি সন্ন্যাসী অরণ্য ইয়া কে আর ভগবান হ্যাঁ ইনকে বাহ্যিক নাম কি আর জরুরত হ্যাঁ। ভট্টাচার্য কহে ইয়ার তৌর যৌবন কেমন সন্ন্যাস ধর্ম হইবে রক্ষা, এ তো কেবল যুবক হ্যাঁ এ কেসে সন্ন্যাসী নিয়ন্ত্রণ করে নিরন্তর ইয়াকে বেদান্ত শুনাইব বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব। নিরন্তর ইনকে বেদান্ত শুনাঙ্গা আর বৈরাগ্যর অদ্বৈত মার্গ, অদ্বৈত মার্গ ভগবান আর জীব যে এক আলাগ নেই হ্যাঁ এ জ্ঞান আর বৈরাগ্য দুনো এ মার্গ নিয়ে প্রবেশ করাঙ্গা কবির ইয়ার ও সন্ন্যাসীকে নষ্ট হয়ে কহেন যদি পুনরতি যোগ পট্ট দিয়া সংস্কার করিয়া উত্তম সম্প্রদায় আমি, যদি উনি চাতে হ্যাঁ আমি তো মধ্যম সম্প্রদায় আমি সন্ন্যাসী দিয়া উনি যদি চাতে আমি ফির দোসরা বার না কার উচ্চ সম্প্রদায় আমি সন্ন্যাসী তো দেশা। শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দুহে দুঃখী হইলা গোপীনাথ আচার্য কিছু কহিতে লাগিলা। ইয়া শুনকে মুকুন্দ আর গোপীনাথ আচার্য মনে বহু কষ্ট হয় আর গোপীনাথ আচার্য বললেন ভট্টাচার্য তুমি ইহার না জানো মহিমা ভগবত্তা লক্ষণে ইহাতে সীমা। শালা হয় না শালাকে বললে ভট্টাচার্য তুমি মালুম নেই ইহা কর ইস ভগবানকে সারা লক্ষণ তুমি আন্দার হাত তুমি জ্ঞান দেবে কত তাহাতে বিখ্যাত ইহ পরমেশ্বর অজ্ঞস্থানে কিছু রহে বিজ্ঞের গোচর। শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে আচার্য কহে বিজ্ঞ মত ঈশ্বর লক্ষণ। ভট্টাচার্যের সামনে উনকে শিষ্য বহুত থা শিষ্য ধরে কাপ কিয়া বলা এখন ভগবান প্রমাণ কিয়া শাস্ত্র কাহ অন্য ভগবান গোপীনাথ বলে হ্যাঁ শাস্ত্র বহুত প্রমাণ ভগবানকে লক্ষণ শাস্ত্র বহুত। শিষ্যর কয় শিষ্য কয় ঈশ্বর তত্ত্ব সাধি অনুমানে আচার্য কয় অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানে কৃপা বিনা ঈশ্বরের কেহ নাহি জ্ঞান। শিষ্য বললো ইয়া অনুমান দেখো কই প্রমাণ হ্যাঁ তো গোপীনাথ আচার্য বলে ঈশ্বরকে অনুমান ইস্তার জ্ঞান মানে ঈশ্বরকে কৃপা হনে সে ঈশ্বরকে সমস্যা সুরজকা কিরণকে সুরজকে দেখছে ইস তরহ নেই আমার টর্চ লাইট সে সূর্যকে দেখছি সূর্যকে দেখলে তো কে লাগতে হ্যাঁ সূর্য কিরণ সূর্যকে দেখলে গেলে কে চাই সূর্যকে দেখলে কে আমার হাতকে দেখলে কে কে লাগে না সূর্যকে কি নাম হাত আর আকাশ বীচ নেই সূর্যকে কিরণ এই সূর্যকে কিন্তু আমার হাত নেই দেখছে অতএব ভগবত সূর্যকে কিরণ ভগবত কিরণ ভগবত কি বসে ভগবানকে নেই সমস্যা চেতন কা মন মে কিয়া চল হ্যাঁ কিয়া আদমি হ্যাঁ হামে কেসে বাত হ্যাঁ চেতন প্রভু যদি কৃপা করে গা তাহলে কিয়া চল তো স্বাভাবিক এক মনুষ্য কে আন্দাজ বিস্তার তো ভগবান কোন সমস্যা ভগবান যদি কিছু কৃপা করে গা তো ভগবান কা কৃপালেশ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পার জিনকা প্রতি ঈশ্বর কা কৃপা হো গিয়া হ্যাঁ কোন বল রা হ্যাঁ গোপীনাথ আচার্য কে বল রা হ্যাঁ যিনি ঈশ্বর কা কৃপা হো গিয়া ও কেবল ঈশ্বর কে জানছে তো আমি সর্বভাবে জায়গাতে তুমি এত অহংকারী হ্যাঁ আর তোমার ঈশ্বরকে কৃপা হো গিয়েছিল তুমি ঈশ্বরকে সমজ গিয়া আর আমার কৃপা হওয়া নেই তুমি এত অহংকারী হ্যাঁ তুমি ঈশ্বর চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান হ্যাঁ তুমি সমজ গিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর কা তোমার প্রতি কৃপা হো গিয়া তোমার এতনা তুমি অহংকারী হ্যাঁ যদ্যপি জগৎগুরু তুমি শাস্ত্র জ্ঞানবান পৃথিবীতে নাই পণ্ডিত তোমার সমান ঈশ্বরের কৃপালেশ নাই তো তোমাতে অতএব ঈশ্বর তত্ত্ব না পারো জানিতে। গোপীনাথ আচার্য কেন তুমি তো এ সার্বভৌম তুমি জগৎগুরু হ্যাঁ তোমার এতনা জ্ঞান হ্যাঁ এতনা শাস্ত্র তোমার সারে দুনিয়াকে তুমি শিক্ষা দিয়েছ লেকিন ईश्वर का कृपा तुम्हारे ऊपर हुआ नहीं, इसीलिए किश्वर को नहीं समझना। तुम्हार नहीं को दोष शास्त्र यही कहे पांडित तद ईश्वर तत्व ज्ञान को गुना है। एक्चुअली यह तुम्हारा दोष नहीं है, शास्त्र में वर्णन है, तो शास्त्र के माध्यम भगवान को नहीं जान सकते कभी, पांडित्य के द्वारा भगवान नहीं जान सकते। सर्वभौम कहे आचार्य कहो सावधान है, क्या बोला है तुम्हारे प्रति कृपा होगी हमारे प्रति कृपा नहीं है। बात करने के थोड़ा सावधान बोलो, इतना हम कह रहे हो तुम्हारा ज्ञान कितना है। आप ही बोला मेरा हम इतना ज्ञानी है, आज तुम्हारे पांडित्य का भगवान ने कृपा से तुम्हारे प्रति कृपा हो गया, तुम्हें इतना है, इतना घमंड नहीं आदमी हम कह रहे हो पांडित। सर्वभौम कहे आचार्य कहो सावधानी तुम्हारे ईश्वर कृपा इथे की प्रमाण, तुम्हारे प्रति ईश्वर का जो कृपा हो गया है इसका प्रमाण क्या है। तुम बोलो मेरा प्रति ईश्वर की कृपा इतने में समझ के चैतन्य में भाग, तुम्हारे प्रति ईश्वर का कृपा हो उसका क्या प्रमाण है। आचार्य कहे वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु दत्त ज्ञान है कृपा से प्रमाण। जो भगवान जी में भगवान ने समझ लिया है यह प्रमाण है भगवान के कृपा मेरा होते हो गया। ये आम का जो आम है ये मैं समझ लिया अतः नहीं मेरा ज्ञान आ गया। भगवान के कृपा से भगवान के नहीं जान सकते, अतः मैंने भगवान के जान लिया अतः भगवान के कृपा मेरे होते है, यह प्रमाण है। और क्या प्रमाण चाहिए यार। शरीर सब ईश्वर लक्षण महाप्रेमावेश तुम्हें पाइयाछ दर्शन, तबु तो ईश्वर ज्ञान ना है तो ईश्वर माया जे बोली भगवान। इनके शरीर सारी ईश्वर का लक्षण है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद तुम नहीं समझ रहे यह भगवान का माया शक्ति है। तुम माया शक्ति तुमके इतने ढाक लिए है भगवान से मैं समझना कि भगवान के नहीं समझ। देखिले ना देखे तारे बहिर्मुख जान, सुनि हासि सार्वभौम बोलिल वचन। जो बहिर्मुख है ये कभी नहीं देख सकता। किसके साथ बात हो रहा है, शाले और गौन वो तो जोकिंग हो रहा है। तो यह सुनि सार्वभौम हंसने लगा, तो क्या क्यों तो गोपीनाथ दादा जो कितना अहंकारी है, भगवान का कृपा हो गया मेरा पांडित्य से मेरा ज्ञान ढक गया, माया में मेरा ज्ञान नहीं है, ईश्वर के सारे लक्ष्य में नहीं देख पा रहा हूँ मैं, मुझको कितना अच्छा का समझ रहा है वो, कितना खुद कितना बड़ा समझ रहा है ये हंस के हंसने लगा। तो सर बोला इष्ट वृष्टि विचार करी ना करियो रोष, शास्त्र दृष्टि कही किसु ना लोहियो दोष। महाभागवत है चैतन्य गोसाई यही कलि काले कृष्ण अवतार नाम सर्वटाचार्य बोला। ये गोपीनाथ आचार्य जी ठीक है आप तो इतना अहंकारी हो गया, लेकिन हम थोड़ा शास्त्र थोड़ा चर्चा करेंगे, मैं कुछ शास्त्र प्रमाण देंगे, थोड़ा क्रोध मत करना, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्रोध मत करना। एक तो बात ये है कोली युग में भगवान विष्णु अवतार लेते ही नहीं, शास्त्र में लिखा है, तो तुम बोला ये भगवान ये क्या है। पूर्वत कहता है भारतवर्ष भगवान बनाने का फैक्ट्री हर उस भगवान बनने का। तो शर्मा भट्टाचार्य भी उस तरह बोल रहा है थोड़ा सा इस तरह शास्त्र दृष्टि इष्ट विष्ट विचार करी ना करियो रोष, रोष अर्थात क्रोध, क्रोध मत करना हम शास्त्र से विचार करेंगे। तुम बोल रहे हो चैतन्य भगवान, हम शास्त्र से विचार करके तो कैसे भगवान है। महाप्रभु महाभागवत है निश्चित रूप में अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, महाभागवत है चैतन्य गोसाई यही कोली काले विष्णु अवतार में, एक कोली जी विष्णु तो अवतार नहीं लिखते हैं, लेकिन महाभागवत ये मत सत्य অতএত্রী যুগ করি কহি বিষ্ণু নাম, কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্র নাম। ভগবান কা নাম ত্রিযুগ হ্যাঁ, ত্রিযুগ শব্দ কা অর্থ কি হ্যাঁ, যে তিন যুগ মে আতে হ্যাঁ, সত্যতে তো দাপ কলিযুগ মে নেই আতে, ইসলিয়ে ভগবান কা নাম ত্রিযুগ। লেকিন ত্রিযুগ কা ভগবান কা নাম ত্রিযুগ কা আর এক অর্থ হ্যাঁ, যুগ অর্থাৎ কি হ্যাঁ জোড়া, ত্রিযুগ অর্থাৎ তিন জোড়া অর্থাৎ ছে গুণ সরৈশ্বর্য। ত্রিযুগ কা আর এক অর্থ হ্যাঁ ভগবান সরৈশ্বর্য গুণ ভগবান, এই ছিল ভগবান কা নাম ত্রিযুগ। লেকিন সার্বভৌম ভক্ত যে ব্যাখ্যা করা হয় ভগবান ত্রিযুগ হ্যাঁ, অতএব কলিযুগ মে নেই আতে হ্যাঁ। শুনিয়া আচার্য কহে দুঃখী হইয়া মনে, শাস্ত্র কহিয়া তুমি করো অভিমানে। আচার্য গোবিন্দ আচার্য বলে তুমি ইতনা শাস্ত্র জ্ঞানী হ্যাঁ, লেকিন লেকিন এই শাস্ত্র জানকে তুমি ইতনা অহংকারী হোক হ্যাঁ। ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্র প্রধান, সেই দুই গ্রন্থ বাক্যে নাহি অবধান। সেই দুই কহে করিতে সাক্ষাৎ অবতার, তুমি কহ কলিতে নাই বিষ্ণুর প্রচার। কলিকালে লীলা অবতার না করে ভগবান, অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম। তুমি শাস্ত্র মে ইতনা বড় পণ্ডিত হ্যায়, লেকিন শাস্ত্র মে তো লেখা হ্যায় ত্রিযুগ, কলিযুগ মে ভগবান লীলা অবতার রূপে নেই আতা, ইসিলিয়ে ত্রিযুগ হ্যায়। লেকিন ভগবান ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্র প্রধান, সেই দুই গ্রন্থ বাক্যে নেই অবদান। সেই দুই কহে করিতে ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান, কিসকা অর্থ কি হ্যাঁ ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান, কিসকা অর্থ কি হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি গুড। ভাগবত শ্রীমৎ ভাগবত আর ভারত অর্থাৎ মহাভারত, এ দুহাই আমার মূল গ্রন্থ। ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান, সেই দুই গ্রন্থ বাক্যে নেই অবধান। দুই তো মেইন শাস্ত্র হ্যাঁ, প্রধান শাস্ত্র এক মহাভারত আর ভাগবত। এই শাস্ত্র কা আপকো মালুম নেই হ্যাঁ, ইয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু কে বারে বর্ণন হ্যাঁ আদি গোবিন্দ আচার্য নে মহাভারত আর ভাগবত সে মহাভারত ভাগবত সে উনোনে প্রমাণ দেঙ্গে চৈতন্য মুখ এসে ভাবে। প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ অবতার, তর্কনিষ্ঠ হয় তোমার নাহি কো বিচার। কোন বলাক করে যুগ ভগবান নেই আতে, কলিযুগ ভগবান আতে হ্যাঁ না, চার যুগে ভগবান চার বর্ণ লেখে আতে হ্যাঁ, ভগবান লীলাবতার নেই আতে হ্যাঁ, ইসিলিয়ে ত্রিযুগ হ্যাঁ। লেকিন ভগবান আতে হ্যাঁ ভাগবত মে কিয়া প্রমাণ, আসন বর্ণ ত্রয়হি অশ্ব দৃঢ়ত অনু যুগন্তনু শুক্ল রক্ত তথাপিত ইদানিং কৃষ্ণদাঙ্গতা। ভগবান চার যুগ মে চার রূপে কিয়া কিয়া জপ শুক্ল তৎসেদ রক্ত রক্ত লাল সুপ্ত রক্ত তথা পিত পিলা গৌড় বর্ণ আর ইদানিং কৃষ্ণতাঙ্গতা, ইদানিং অর্থাৎ ইদানিং অর্থাৎ ইদানিং আবি 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 কব দাপুর যুগ। তো কৃষ্ণ জন্ম লিয়া গর্গ আচার্য সব মুনিরে দেখে যে এ বালককে এ বালক তো হর যুগ মে আতে হ্যাঁ, এ যুগ মে কালা রূপ লিয়া আলাগ আলাগ যুগ মে রক্ত পিত শ্বেত শুক্ল রক্ত তথা পিত, তো এ তো বর্ণন হ্যাঁ শাস্ত্র মে চার যুগ মে আতে হ্যাঁ। শ্যাম ভট্টাচার্য আপ শাস্ত্র কে ভুল গিয়া, দ্বাপর যুগ মে কালা রূপ মে আতা, সত্য যুগ মে শুক্ল রূপ মে আতা, আর রক্ত রূপ মে আতা তেতা যুগ মে, আর পীতাম্বর রূপ এক বাচ্চা হ্যাঁ তো কলিযুগ মে আয়া আয়েগা, যে তো দেখো না আপ বলা কলিযুগ মে ভগবান অবতার নেই লেতে হ্যাঁ। আর ভাগবত সে অনেক বিখ্যাত ছিল কথা কোন সা কাল হাম কাল পড়া থা কাল নেই আজ আজ পড়া না কাল আজ পড়া থা কৃষ্ণ বর্ণম পিছা কৃষ্ণ সঙ্গ পঙ্গস্থ পার্ষদম যজ্ঞ সংকীর্তন প্রায়ই জয়ন্তী সুমেধস, এ ভাগবত সে উনি और बुद्ध को मान दिया, महाभारत से वर्णन दिया, सुवर्ण वर्ण हेमांग बरांग बरंग चंदनांग दी सन्नाशकृत शांत निष्ठ शांत परायण। इस तरह शास्त्र से भगवान जी के गोविंद कथा जी कह रहे हैं, तुम्हार आगे या तो कथा ना ही प्रयोजन, ऊसर भूमि ते जन बीजेर रोपण, ऊसर भूमि अर्थात जाबे जो फसल नहीं आता है, ऊसर जाबे फसल नहीं तो ऊसर भूमि, तो ऊसर भूमि बीज रोपण मैंने क्या आता है, कुछ नहीं आता है। तो तुम्हारे पास इस तरह शास्त्र बात बोलना उस तरह है, फालतू टाइम नष्ट है। तुम्हार आगे या तो कथा ना ही प्रयोजन, ऊसर भूमि ते जेनो बीजेर रोपण, तुम्हार उपरे तार कृपा जबे हबे एसब सिद्धांत तबे तुम्हें तो कहिबे। जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा तुम्हारे प्रति होगा तो मैं जब इस तरह बोल रहा हूँ तुम्हें उस तरह बोलोगे। अभी नहीं हुआ इसीलिए नहीं चाहो, लेकिन जब कृपा होगा मैं जो बोल रहा हूँ तुम भी इस तरह बोलोगे। तुम्हार जो शिष्य कहे कुतर्क नाना बात, यार की दोष ये मायार प्रसाद, ये मायार प्रसाद है, तुम्हारे शिष्य लोग जो झगड़ा कर रहा है वो माया का प्रसाद है। इसीलिए कर रहा है। तबे भक्ताचार्य कहे जाओ गोसाई स्थाने अमार नामे गण सहित करो निमंत्रण। भट्टा ठीक है बहुत हो गया भाई, अभी जाओ गोसाई को लेकर प्रसाद वगैरह खाएंगे। ये तो बात जो गया चलते ही रहेगा, ये को खत्म नहीं होगा, आप लेके आओ खाना पीना करेंगे। प्रसादानी तारे करा हो कराओ आगे भिक्षा, पश्चात ऐसी हमारे कराई हो शिक्षा। मुझको आप ज्ञान देना चाहते हैं बाद में ज्ञान देना, बहुत टाइम है, अभी गोसाई को लेके आ जाओ खिलाओ सेवा करो। आचार्य भग्निपति, भग्निपति अर्थात भग्नि का पति, भग्निपति अर्थात बहन का पति है, बहन नहीं भग्निपति, हाँ बहन नहीं, हाँ भग्निपति जमाई बाबू, बांग्ला में बोलते जमाई बाबू, दादा बाबू बहुत सर, भग्निपति बहनी जीजा जी दादा नहीं ला। तो आचार्य भग्निपति शैलक भट्टाचार्य गोविंद दादा जो है बहन है और साला कौन है भट्टाचार्य। निंदा स्तुति हास्य शिक्षा करानो आचार्य, इसीलिए साला को गोविंद दादा जो निंदा कर रहा है, कभी कभी स्तुति प्रशंसा कर, इस तरह शास्त्र शिक्षा दे रहा है। आचार्य सिद्धांते मुकुंदेर होइल संतोष, भट्टाचार्य वाक्य मने होइल दुख रोष। साथ में कौन था, मुकुंद था। तो इस तरह गोपीनाथ दादा इतना बढ़िया शास्त्र की व्याख्या थे, बहुत मन में खुद आनंद, इतना और पंडित है इस तरह महाप्रभु को प्रमाण कर दिया। लेकिन भट्टाचार्य भी नहीं जब माना नहीं इस तरह, तो मन में था कष्ट कितना कितना माया में इतना ज्ञानी लग फल दिया। गोसाई स्थान आचार्य कहिलो आगमन, भट्टाचार्य नामे तारे कहिलो निमंत्रण, मुकुंद सहित करे भट्टाचार्यर कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पाइया व्यथा। तो टाइम है सुनेंगे नहीं प्रसाद लेने जाएंगे। तो मुकुंद गोविंद दादाजी आके महाप्रभु को बोले, महाप्रभु इस तरह गोविंद सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, तो मुकुंद तो मन में कष्ट है, अरे क्या फालतू जाके यार मायावादी है आपका निंदा कर। तो महाप्रभु बोले क्या हो, तो गोपीनाथ ने सारे बात बोले, बोले आपको वेदांत सिखाना चाहते हैं। तो यह मुकुंद बहुत क्रोध किया, तो महाप्रभु को समझा, देखो उनका वात्सल्य प्रेमी मुझको ज्ञान देना चाहते हैं, तो उनके तुम्हारे उनका दोष क्यों देखना, उन्होंने सोचा मेरा ज्ञान कम है सन्यास नहीं टिकेगा इसीलिए मुझे ज्ञान देने से सन्यास, मैं तो भला ही करना चाहता तुम्हारे तुम्हारा कष्ट की बात है। इस तरह आगे वर्णन है, फिर पढ़ के जाऊँ आप तक सुन में जाए, शायद व्याख्या करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना, महाप्रभु कहे ओसे मत कहो आमा प्रति भट्टाचार्य हय अनुग्रह, भट्टाचार्य मेरा प्रति कृपा कर रहा है, हाँ इस तरह उनका निगेटिव सोच है। आमार सन्यास धर्म चाहे न राखीते बात्सल्य करुणा करें कि दोषी हाते, बात्सल्य द्वारा कृपा करके मेरा सन्यास रखना तो ये उनका दोष क्या है। आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य शने आनंदे कईला जगन्नाथ दर्शने, भट्टाचार्य संगे तार मंदिर आईला प्रभुरे आसन दिया आपने बसिला, वेदांत पढ़ाइते तबे आरम्भ करिला स्नेह भक्ति करे प्रभु किसु प्रभुरे कहिला, वेदांत श्रवणे सन्यासीर धर्म निरंतर करो तुमि वेदांत श्रवण, समझते हैं सन्यासी करते हो क्या वेदांत श्रवण कर, तो मैं पाठ करूंगा तुम श्रवण करो, कौन बोल रहा है
सर्वमान्य
प्रभु कहे मोरे तुम्हें करो अनुग्रह से कर्तव्य तुम्हें जे मोरे कहो, आप कृपा का आप जो बोलेगा वो करने चाहिए, आप मेरा इतना कृपाल मेरा प्रति है। सप्त दिन पर्यंत ओसे करे ना श्रवण भालो मंद नाही कहे, सप्त दिन पर्यंत ओसे करे ना श्रवणे भालो मंद नाही कहे, बसी मात्र सुन सात दिन सुन रहा है हा ना कुछ नहीं बोल रहा, हूँ हो सकते बोला था लेकिन बोला कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों सुन रहा है। अष्टम दिवस तार पुसे सार्वभौम, सात दिन करो तुम्हें वेदांत श्रवण भालो मंद नाही कहो रह मौन धरी, बुझो कि ना बुझो इया जानते ना पारी कभी तो हूँ बोलना चाहिए वह भी नहीं कर रहा, मैं सात दिन वेदांत पढ़ा तुम कुछ नहीं माता इधर में नहीं हिला रहा इधर में नहीं हिला रहा हूँ शब्द नहीं कर रहा, क्योंकि समझ रहा कि नहीं समझ रहा कि तुम्हारा मन में दूसरा कुछ चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा क्या है। हम जब इस तरह देता तो हम ये बोलता क्या है तो पत्नी के बाद यह दोहरा क्या है या क्लास मन कहा है प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही उद्धारण तुम्हार अज्ञाते मात्र करिए श्रवण, मैं तो मूर्ख है अब श्रवण करने के लिए श्रवण करने मेरे समझने का क्षमता नहीं है मानो मैं क्लास वन में पढ़ाई कर रहा हूँ उसको तो सिखाया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल सेक थीटा, इस तरह समझ में अब श्रवण करने के बोला मैं श्रवण कर रहा हूँ मैं कैसे समझेगा मेरा कहा ज्ञान है उतना समझने का, लेकिन आप बोला श्रवण कर इसलिए श्रवण कर रहा हूँ। सन्यासी धर्म लागी श्रवण मात्र करी तुम जो अर्थ करो बुझीते ना पारी, आप बोला सन्यासी का धर्म श्रवण करना चाहिए श्रवण कर रहा हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहा है। भट्टाचार्य कहे ना बुद्धि हेनो ज्ञान जा बुझीवार लागे से पुसे पुनर्वा, ठीक है तुम्हें नहीं समझ रहा लेकिन तो पुसे का मैं नहीं समझ रहा था दूसरा बोलिए, जो नहीं समझ रहा तो बोलेगा हमें नहीं समझा आप बोले बताइए दूसरा बार, अब तो वो भी नहीं बोल रहा है आप जो बोला मैं नहीं समझ रहा हूँ लेकिन जो नहीं समझ रहा तो बोलेगा मैं नहीं समझ रहा आप बोलिए थोड़ा दूसरा, वो तो नहीं बोल रहा है तुम्हें सुनी सुनी रहो मौन मात्र धरी हृदय की आसे तुम्हार बुझीते ना पाई, हृदय चल रहा है लग रहा है प्रभु का सूत्र अर्थ बुझिए निर्मल तुम्हार व्याख्या सुनी है सुनी मन है तो बिकल, तो श्लोक जो है आप जो पढ़ते हैं वो तो मेरा मौसम अर्थ मेरा मालूम है लेकिन आप जो व्याख्या करते हैं मैं नहीं समझ रहा क्या बोल रहा है तो श्लोक जो है वो तो मैं समझ रहा हूँ श्लोक का अर्थ किया है लेकिन जो व्याख्या कर रहे हैं वो नहीं समझ रहा। सूत्र अर्थ भाष्य कहे भाष्य कहे प्रकाशिया तुम्हें भाष्य कहो सुस्ते अर्थ अच्छा दिया। एक्चुअली जो श्लोक है उसको जो व्याख्या है उसको वो श्लोक को प्रकाश करते हैं, लेकिन आप जो श्लोक को व्याख्या करते हैं उस श्लोक को ढाक देते हैं। सूत्र मुख्य अर्थ ना करो व्याख्यान कल्पनार्थ तुम्हें ता करो अच्छा दान। सूत्र जो और श्लोक का जो मुख्य अर्थ वो तो नहीं बोलता है, आप कल्पना करके दूसरा कुछ बोलते हैं और श्लोक का जो मूल अर्थ वो ढाक जाता है। उपनिषद शब्द जे मुख्य अर्थ है से अर्थ मुख्य व्यास सूत्र सब कहे मुख्यार्थ छाड़िया करो गौणार्थ कल्पना অভিধা ভিত্তি চারি করো শব্দের লক্ষণ। এছাড়া ব্যাখ্যা করতে হবে টাপ হবে না অভিধা কি এছাড়া গ্রামাটিক্যাল বহু কঠিন কারণ এটা শুনতে যাই বাদ নেই আগে ব্যাখ্যা করে এই শুনে যে যে জ্ঞান সমূহ অর্থাৎ যে সব হো রা হাম কে সমঝে গা যে সারে বাত হাম ব্যাকরণ গ্রাম গ্রামাটিক্যাল যাদের নলেজ সৃষ্টি নেই তো সারে শব্দের অর্থ অভিধা কি গৌণার্থ মুখ্যার্থ কি তো হ্যাঁ থাক লক্ষণ কি প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ জীবের অস্থিবিষ্ঠা দুই শঙ্খ গময় শ্রুতি বাক্য সেই দুই মহাপবিত্র হয় শত প্রমাণ বেদ সত্য যেই কয় লক্ষণা কইলে শত প্রমাণ হানি হয় ব্যাসসূত্র অর্থ রয়েছে সূর্যের কিরণ সকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ সেই ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান তারে নিরাকার করি করা ব্যাখ্যান নির্বিশেষ তারে কহে যেই শ্রুতিগণ প্রকৃতি নিষেধিত তারে অপ্রাকৃত স্থাপন ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীব সেই ব্রহ্ম পুনরূপি হয়ে যায় লয় অপাদান করণ অধিকরণ কারত্রি ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিন ভগবান বহু হইতে যবে কইল মন প্রাকৃত শক্তিতে তবে কইল বিলোকন সেই কালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন অতএব অপ্রাকৃত নেত্রমন শব্দ ব্রহ্ম শব্দে কয়ে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বেদের নিগুড় অর্থ বুঝানো না যায় পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করে নিশ্চয়।
আমি যে হ্যাঁ চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বভট্ট বর্ণনা করায় শাস্ত্র সে যে ভগবানকে শাস্ত্র আপনি নিরাকার বল রা হ্যাঁ ইস তারা ভগবান কো সবিশেষ তত্ত্ব আচ্ছাদিত কিয়া হ্যাঁ তো শাস্ত্র মে ভগবান কা আলাগ আলাগ রূপ হ্যাঁ নিরাকার ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবান লেকিন আপ ভগবান রূপ কো অস্বীকার করকে কেবল নিরাকার রূপ ব্যাখ্যা কর তো ইস তরহ যে শ্লোক মে প্রভুপাদ ব্যাখ্যা কিয়া হ্যাঁ আম লোক বিস্তৃত জানা চাহে তো চৈতন্য চৈতন্য তো প্রভুপাদ কা ব্যাখ্যা হরেক শ্লোক কা ইস তরহ শুননা চাহিয়ে या भक्त लोग का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये जो आगे जो वर्णन होगा और वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर के साथ महाप्रभु के जो चर्चा होगा ये तो हम चैतन्य चैतन्य प्रभुपाद का व्याख्या पढ़ेंगे तो मायावादी भाष्य हम बहुत आसानी से खंडन कर सकते। ये दुनिया में मायावादी भाष्य बहुत प्रबल है तो उनको उनको खंडन करने के लिए हमें श्री प्रभुपाद का ये दो व्याख्या पढ़ना चाहिए। मध्य लीला ये अध्याय है षष्ठ परिच्छेद। किसी को कोई प्रश्न है? है प्रश्न है क्वेश्चन क्वेश्चन কৃষ্ণ বর্ণ তৃষা কৃষ্ণ উসকে বলে আসন বর্ণাস্ত্রেয় দশম স্কন্ধ
8th chapter, 13 text. 10, 8, 13. 13. और एक श्लोक है अभी पढ़ा नहीं, भागवत एकादश स्कंद 5:31 और कृष्ण वर्ण कृष्ण कृष्ण है 32 नंबर, उसको पहले जो श्लोक है वो 31 वह भी वर्णन है जो निमी राजा के साथ नवजुगंध जो वर्णन है वो बात का तात्पर्य में है पूरे दस मेरा नाम याद नहीं है जिस तरह पूरी भारती अरण्य गिरी सार्वभौम इस तरह अलग सरस्वती
केशव
बन अरण्य पुरी भारती सरस्वती सर्वभौम इस तरह दस अष्ट उत्तर शत उत्तर था आगे अष्ट उत्तर शत शत के बाद आठ अर्थात 108 अष्टोत्तर शत शब्द का अर्थ 108 108 शब्द बहुत शुभ संख्या ऑस्पिशियस 108 गोपिका 108 पूरा उपनिषद इसीलिए
वैष्णव को भय अष्टोत्तर शत बोलते
कृष्ण आज बहुत थके हुए हैं प्रसाद थके रेस्ट लेना और नेक्स्ट टाइम क्या मंगल करना श्री श्री चैतन्य चैतन्य की जगत श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद सन्नाश लीला की स्वामी दो भक्त गौर